एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
से ज्यादा मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है मंजिल यीशु से। से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा कराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम आज परमेश्वर का वचन सुनने से पहले फिर से परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम सब तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता। हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे, तेरा पवित्र आत्मा से भर दे पिता, हमें समझ शक्ति दे और हमें तेरे राह में चला। विशेषकर मेरे श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके संग हो, उन्हें तेरे वचन को समझने और तेरे राह में चलने के लिए मदद और अगुवाई कर। पिता परमेश्वर मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है स्वर्गीय परिवार। आइए हम परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे जो हमें मिलती है फिलिपियों की पुस्तक, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 पद में यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोहते भी हैं। प्यारो, मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी के लिए उसके कलीसिया को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करना चाहिए? दूसरे आगमन की प्रत्याशा हमारे निर्णयों और हमारे जीवन जीने के तरीके को कैसे प्रेरित करेगी। हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे, यह प्रतिज्ञा हमें पौलुस बतलाता है 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 में। पिछले समय में एक पाठ उस परिवार से संबंधित था जो परमेश्वर ने इस धरती पर स्थापित किया है। इस परिवार का हिस्सा होना और एक प्रेममय पिता का होना जो हमारी परवाह करता है और हमें अपने सारे लाभ देता है, क्या ही आशीष है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 103:2 में इस तरह का, इस पाठ में हम स्वर्ग में इस परिवार की शानदार स्थिति पर विचार करेंगे। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, वे ही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हम पढ़ते हैं इसे 1 कुरिन्थियों 2:9 में। उद्धारकर्ता और छुड़ाए गए लोगों के साथ एक आनंदमय और गौरवशाली मिलन की प्रत्याशा हमें वर्तमान में आशा और साहस से भर देनी चाहिए। हमें कृतज्ञता से भर देना चाहिए कि जल्द ही हम अपने स्वर्गीय परिवार में शामिल होंगे और अनंत काल के लिए परमेश्वर के देश के नागरिक बन जाएंगे। यह एक अनोखा समय है। इतिहास के इस दौर में जीना और अनंत काल की तैयारी करना, यह कितने सौभाग्य की बात है। हम एक नए समुदाय के नागरिक बन रहे हैं। फिलिपियों 3:20 में हमने पढ़ा, उसी तरह 2 कुरिन्थियों 5:1 में इस तरह का प्रतिज्ञा हम पाते हैं। पौलुस हमारी सच्ची नागरिकता के बारे में फिलिपियों 3:20 में कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। पाप और दुष्टता से दूषित यह पृथ्वी हमारा सच्चा घर नहीं है। प्यारो, प्रभु ने हमें नए आकाश और नई पृथ्वी का वादा किया है जिसमें धार्मिकता वास करेगी। जिस तरह का प्रतिज्ञा हम पढ़ते हैं 2 पत्रस 3:13 में, स्पष्ट रूप से इस संसार की वर्तमान स्थिति हमें दिखाती है कि हम सभी मानवीय दुखों के अंत के निकट हैं। वह दिन आ रहा है जब सब कुछ हमेशा के लिए नया हो जाएगा। आज भी हम कई संकेत देखते हैं जो बताते हैं कि नई पृथ्वी निकट है। एक मसीही को इस तथ्य के प्रति निरंतर जागरूकता की आवश्यकता है कि वह स्वर्ग का नागरिक है। अपने देश के प्रति लगाव उसे उसके प्रति वफादार बनाता है। वह जहां भी रहे वह अपने देश के नाम को गौरवान्वित करने वाला आचरण करेगा। पौलुस हमारे पार्थिव शरीर की तुलना एक तंबू से और स्वर्ग में हमारे शरीर की तुलना परमेश्वर की ओर से एक भवन अर्थात हाथों से ना बनाया हुआ घर जो स्वर्ग में चिरस्थाई है से करता है। 2 कुरिन्थियों 5:1 में पौलुस जो स्वयं एक तंबू बनाने वाला व्यक्ति था हमारे पार्थिव शरीर का सटीक उदाहरण देता है। जैसे तंबू पार्थिव पदार्थों से बना होता है वैसे ही शरीर भी है। जैसे तंबू एक अस्थाई निवास है वैसे ही शरीर भी है। 2 पत्रस 1:13-14 में पत्रस भी हमारे पार्थिव शरीर की तुलना एक तंबू से करता है। वह कहता है, मैं समझता हूँ कि जब तक मैं इस तंबू में हूँ तब तक तुम्हें शुद्धि दिलाकर उभारता रहूँ, क्योंकि जानता हूँ कि जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया वैसे ही मुझे अपना तंबू गिरा देना अवश्य है। जैसे जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता जाता है या बीमार होता जाता है हमें इस बात का एहसास होता जाता है कि परमेश्वर की ओर से एक भवन, एक ऐसा घर जो हाथों ने ना बनाया गया हो। 2 कुरिन्थियों 5:1 कितना अद्भुत होगा। परमेश्वर की ओर से हम इस भवन के लिए आप किस बात के लिए सबसे ज्यादा आभारी होंगे। हम अनंत दिन की प्रतीक्षा में हैं। रोमियों 8:18-23 और इब्रानियों 10:35-37 में हम अनंत दिन की प्रतीक्षा के बारे में पढ़ते हैं। ये आयतों में मसीहों की उस गहरी लालसा का उजागर है जो मानव जाति और सृष्टि की मूल सिद्धता को पुनः प्राप्त करने के लिए है। प्रभु हमारी जरूरतों और इच्छाओं को जानते हैं, इसलिए वह अपने आगमन में देरी नहीं करना चाहते। वादा कहता है वह काम पूरा करके उसे शीघ्रता से पूरा करेगा। प्रभु पृथ्वी पर एक छोटा सा काम पूरा करेगा, रोमियो 9:28। मसीह के दूसरे आगमन के बारे में परमेश्वर का वादा इब्रानियों 10:34-38 में इस प्रकार हमें मिलता है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उसे प्रसन्न न होगा। परमेश्वर हमें उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम आनंद देने की प्रतिज्ञा करता है। इसके विषय में हम पढ़ते हैं यशायाह 35:5-10 में और प्रकाशित वाक्य 21:1-5 में। यशायाह 35:5-10 में मनुष्य प्रकृति और गतिविधियों के संबंध में नई पृथ्वी के आश्चर्यों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन किसी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के स्रोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में स्रोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। 8 कहता है, और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, क्योंकि अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित चलेंगे, और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यहूना ने नई पृथ्वी के विषय में दर्शन देखा और सुना, इसके विषय में वह प्रकाशित वाक्य 21:1-5 में लिखा है और प्रकाशित वाक्य 22:1-5 में भी। क्या हम इतने परिपूर्ण और आनंदमय जीवन की कल्पना भी कर सकते हैं? हमारे पास अभी जो सबसे अच्छा है वह भी उस समय की तुलना में बहुत कम है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर और मेमने का सिंहासन वहां होगा प्यारो, और हम उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उनके हमारे माथे पर लिखा होगा। प्रकाशित वाक्य 22:4 कहता है, वही उद्धारकर्ता जिसने फिलिस्तीन में शिक्षा दी, चंगा किया और प्रचार किया, वही परमेश्वर का मेमना जिसने हमारे उद्धार के लिए अपना प्राण दिया हमारे साथ रहेगा, और हम अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। उसके पवित्र हाथों में हम क्रूस पर उसके बलिदान के चिन्ह देखेंगे, और हम जय जयकार करेंगे, हालेलुया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। प्रकाशित वाक्य 19:6। परमेश्वर की कृपा से यह निश्चय करें कि कोई भी चीज आपको इस शानदार विरासत से वंचित नहीं करने पाए। यशायाह 65:17-25 नए स्वर्ग और पृथ्वी के अन्य पहलुओं का वर्णन इस प्रकार करता है। मैं पढ़ता हूँ 17 से, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित हूंगा, उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। वे घर बनाकर उसमें उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। 23वां पद कहता है, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल की नाय भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा, यहोवा का यही वचन है। हम घर की ओर जा रहे हैं प्यारो, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए मर गया। उसने हमारे लिए एक नगर बसाया है, नया यरूशलेम हमारा विश्राम स्थल है। ईश्वर के नगर में कोई उदासी नहीं होगी, दुख का कोई बिलाप, कुचली हुई आशाओं और दबे हुए स्नेह का कोई बिलाप कभी सुनाई नहीं देगा। जल्द ही भारीपन के वस्त्र विवाह के वस्त्र में बदल जाएंगे, जल्द ही हम अपने राजा का राज्याभिषेक देखेंगे। निश्चय ही यीशु आ रहा है। यीशु ने अपने आगमन के चिन्हों और उस दिन के लिए हमारी तैयारी के बारे में मत्ती 24 अध्याय में बतलाया है। यीशु ने अध्याय 24 के आवर्ती विषय पर दो दृष्टांतों के साथ जोर दिया। दूसरा दृष्टांत मत्ती 25 का 1-13 में मिलता है। दृष्टांत में 5 बुद्धिमान कुंवारियां यीशु के लिए तैयार और 5 मूर्ख कुंवारियां यीशु के आगमन के लिए तैयार नहीं रहने वाले विश्वासियों को दर्शाता है। दुल्हा यीशु मसीह को दिखाता है, दीपक परमेश्वर का वचन को दिखलाता है, तेल पवित्र आत्मा को, और प्रतीक्षा का समय इंतजार का समय दुल्हे का आगमन यीशु के दूसरे आगमन को दर्शाता है, और आधी रात का समय दुनिया का अंत यीशु के आने के ठीक पहले का समय को बोध करता है। तेल का प्रकाश सत्य के लिए गवाही देने को बोध करता है। यीशु के दृष्टांतों में 3 सबसे दुखद कथन यहां पाए जाते हैं। वह क्या है? वह पहला, हमारे दीपक बुझ गए हैं। दूसरा, दरवाजा बंद था। और तीसरा, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह परमेश्वर के न्याय का दृष्टांत है जो स्पष्ट और अपरिवर्तनीय है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विदेशी जहाजों के कप्तान अपने गंतव्य के निकट पहुंचते ही अपना स्थान बंदरगाह पायलट को सौंप देते हैं। उनके जहाजों पर एक झंडा भी फहराया जाता है जिस पर लिखा होगा, बंदरगाह पायलट जहाज पर है। प्यारो, हम अनंत काल के बंदरगाह के निकट हैं। क्या आप यीशु के प्रति समर्पित हैं? क्या वह दिव्य बंदरगाह पायलट प्रभु यीशु मसीह आपके सुरक्षित आगमन के लिए आपके साथ हैं? आपका व्यवहार दूसरों को कैसे बताता है कि यीशु आपकी स्वर्गीय यात्रा का मार्गदर्शन कर रहे हैं? स्वर्ग के बादलों में मनुष्य के पुत्र के शीघ्र आगमन में विश्वास सच्चे मसीह को जीवन के सामान्य कार्यों के प्रति लापरवाह नहीं बनाएगा। उनकी सत्यनिष्ठा, विश्वास योग्यता और निष्ठा सांसारिक बातों में परखी और प्रमाणित होती है। यदि वे छोटे से छोटे बातों में भी विश्वास योग्य हैं, तो वे बहुत में भी विश्वास योग्य होंगे, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। प्यारो, उसके लिए हम कैसे तैयार रह सकते हैं? हम कैसे उसके लिए तैयार हो सकते हैं? एक उपाय है कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें ताकि हम परीक्षा में ना फंसे। उसके साथ साथ हम परमेश्वर के साथ संपर्क बना रहे, उसके संबंध में रहे, उसके वचन पढ़ते रहने के द्वारा। प्यारो, प्रभु हमें दुष्ट से बचाए और पवित्र बने रहने में हमारी सहायता करेंगे। तब उसके आगमन के दिन हम यह नहीं कहेंगे, कटनी बीत गई, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई और हम नहीं बचे, जैसा कि लिखा है यिर्मयाह 8:20 में। इसके बजाय हम विजयी होकर चिल्लाएंगे और कहेंगे, यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उसके उद्धार से आनंदित और मगन होंगे, जैसा कि प्रतिज्ञा लिखा है यशायाह 25:9 में। इसलिए प्यारो, जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है, हम दुनिया को देखते हैं, जब हम समय को देखते हैं, दुनिया की स्थितियों को देखते हैं, उसके घटनाओं को देखते हैं, हम जान पाते हैं कि दुनिया का अंत समीप है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। हम सबों को अपने जीवन को तैयार करना है। प्यारो, आइए हम अपना दृष्टि ऊपर की ओर लगाए, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए और उसे सहायता प्राप्त करें, अपने जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने दें। परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, हमें शक्ति देंगे ताकि हम उसके ताकत पाकर हम विजयी हो पाए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे, परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमें तू ग्रहण कर जैसा तूने हमें बुलाया है और तेरा वचन हमें सुनाया है। पिता परमेश्वर, तू हमसे प्रेम करता है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू हमें तेरे राज में ले जाना चाहता है, तू हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, तू आज हमें तेरा पवित्र आत्मा का शक्ति देना चाहता है पिता, ताकि हम उसे ग्रहण करके इस अंतिम समय में तेरे संगति में रहे और तेरे राज के लिए तैयार रहें। पिता परमेश्वर हमें ऐसा मदद कर, हम सब तेरे पास आते हैं, हम तेरे तुझ में समर्पित होते हैं, हम सबों को तू बहुताय से आशीष दे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।